आगे है तेरे को नंबर 4 आयत 43 से 50, किताबुल्लाह की पैरवी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला तब अंतुम सुकारा। या ये भी बता दूं कि ये आयत जो हमारे सामने है 43, ये हुरमत शराब की आयतों में से अब बीच की आयत है, एक पीछे गुजर गई है, एक आगे और आएगी। ऐ ईमान वालो, जब तुम नशे में मस्त हो तो नमाज के करीब भी ना जाओ, जब तक कि अपनी बात को समझने ना लगो, और जुनाबत की हालत में जब तक के गुसल ना कर लो। हाँ, अगर राह चलते गुजर जाने वाले हो तो और बात है, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम से कोई कज़ाए हाजत से वापस आया हो, या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो और तुम्हें पानी ना मिले, तो पाक मट्टी का कसद करो और अपने मुंह और अपने हाथ मल लो। तो ये मुमकिन आयते हैं, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया? वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला है, और अल्लाह ताला का दोस्त होना काफ़ी है, और अल्लाह ताला का मददगार होना भी काफ़ी है। बस यहूद कलेमात को इनकी ठीक जगह से हेर फेर कर देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और नाफरमानी की, और सुन इसके बगैर के तू सुना जाए। यानी बद्दुआ देते थे नबी को कि तेरी बातें ना सुनी जाए, यानी तू पॉपुलर ना हो, तू मशहूर ना हो, ये मुराद है, और हमारी रियायत कर। लेकिन इस कहने में अपनी ज़ुबान को पेच देते हैं और दीन में ताना देते हैं। और अगर ये लोग कहते कि हमने सुना और हमने फरमाबरदारी की और आप सुनिए और हमें देखिए, तो ये इनके लिए बहुत बेहतर और नहायत ही मुनासिब था। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके कुफर की वजह से इन्हें लानत की है, बस ये बहुत ही कम ईमान लाते हैं। ए अहले किताब, हमने नाजिल फरमाया जो इसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, इस पर ईमान लाओ, इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें और इन्हें उल्टा कर पीठ की तरफ कर दें, या इन पर लानत भेजें जैसे हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की है, और अल्लाह का काम किया गया है। यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता। बड़ी अहम आयत है, शिर्क की माफ़ी नहीं है जब तक कि उससे तौबा ना की जाए। और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे, इसने बहुत बड़ा गुनाह किया और बुख्तान बांधा। क्या आपने इन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीज़गी और सताइश खुद करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहे पाकीज़ा करता है, किसी पर एक धागे के बराबर जुल्म न किया जाएगा। देखो ये लोग अल्लाह ताला पर किस तरह झूठ बांधते हैं, ये हरकत सरीह गुनाह होने के लिए काफ़ी है। क्या पता चला कि इस पूरे हिस्से में अल्लाह ताला ने हमें जो मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई, उसमें शरीयत की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मसलन आप देखिए कि हमने इसमें वुजू का तरीका सीखा, तो अमल की बातों में तहारत का अहतमाम कीजिए। आज छोटे बच्चों को पॉटी ट्रेन करते हुए या उसको पैम्पर्स यूज़ करते हुए भी इस चीज़ का ख्याल रखिए कि शुरू से उसको पाकी और नापाकी का फ़र्क पता चले। आप देखिए ना, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, बच्चा शुरू से तकरीबन 2 ढाई 3 साल तक गंदगी के साथ चिपका रहता है, उसको पता ही नहीं चलता। फिर आप देखिए कि हमारे टॉयलेट्स बाज़ दफ़ा ऐसे बन गए कि जिसमें यूरिनेट करने के दौरान बाज़ दफ़ा छींटों से इंसान नहीं बच सकता। फिर इसी तरह से आप देखिए कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शरीयत ने खोल खोल के बयान कर दी, लेकिन आज वक्त के साथ साथ हम टिश्यू पेपर कल्चर को तो पसंद करने लग गए। आज कई घरों में पानी का इहतमाम ही नहीं है। आप जो चीज़ें बहुत वाज़े महसूस करते हैं इस्लाम और गैर इस्लाम में, वो पानी का इस्तेमाल है। तो लिहाजा बहुत सारी सहूलतें अल्लाह ने हमारे लिए रखी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद शुरू से बच्चों को तहारत के फ़ायदे और इस चीज़ों पे लेके चलिए। फिर सच बोलिए, रास्तबाजी, हैंकी पैंकी नहीं, ट्रिक्स नहीं, 2+2 क्या होता है ये नहीं, गुमराहियों से भी बचना है। अल्लाह ताला की किताब को दिल से हक मानिए, हमें इम्प्रेस होना है इस किताब से, ना कि हम ये सोचें कि ये तो 1400 साल पुरानी किताब है, इसको पढ़ने से क्या मिलेगा। फिर हक और नाहक का फ़र्क नोट करना है और शिर्क से बचना है। ख़ास तौर पे आप देखिए कि इसमें शिर्क की बात है। सहाबा कराम की जितनी खूबियाँ अभी तक हमने पढ़ी, और आज हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, इनके बारे में देखिए कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जिस चीज़ के लिए ये लोग थे, ये शिर्क था। जैसे स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं बाहर की दुनिया में ना, घरों में भी लगे होते हैं, किचन में भी, क्योंकि उन लोगों को आग से बहुत डर लगता है। लिफ्ट के बाहर लिखा होता है इससे ज़्यादा लोग ना बैठें, इन केस ऑफ फायर। आग लगी तो स्टेयर्स लेना, इस हॉल में बैठना इसकी एक गुंजाइश है, इसका एक एग्ज़िट चाहिए इनको। ये वो सारी चीज़ें इनकी शो क्या करती हैं कि इनको आग से डर लगता है। आप और मैं आज उम्मते मुस्लिमा के लोग हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को महसूस करना है। कितना प्यारा दीन है, देखिए माशाल्लाह हमें कितने दिन हो गए पढ़ते हुए। कोई एक मसला, कोई एक हुक्म आपको इन 4-5 पारों में मिला जिस पे आप शर्मिंदा हो, जिस पे आप एम्बेरेस्ड हो, जिस पे आप सोचे ना कोई गैर मुस्लिम ना सुने, हाय इस्लाम तो देखो चोरी की दावत दे रहा है, देखो इस्लाम कहता है लोगों को मारो, कुछ भी नहीं है। अगर आपने मैंने ये दीन गैरों को दिया होता, आज 2 बिलियन 20 बिलियन में बदली होती, पूरी दुनिया की आबादी में फ्यू पीपल रह जाते गैर इस्लाम पे। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें अल्लाह इस काम के लिए कबूल करे। अपनी ज़िंदगी का आज से मकसद बनाए, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये जो आज नॉन मुस्लिम मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती करते हैं ना, उसकी वजह पता क्या है? रिएक्शन है कि तुमने इतना खूबसूरत दीन छुपा के रखा हुआ है। अल्लाह ने हमें उनके लिए दिया था, हमने उसको छुपा के रख लिया, तो अगला फिर छीनेगा हमसे। फिर आगे देखिए, रुकू नंबर 5 है, 51 से 59, टॉपिक है हिदायत पर कौन। अलम तर इल्लज़ीना ऊतू नसीबा मिनल किताब, क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था, जो बुत का और बातिल माबूद का इतिकाद रखते हैं और काफिरों के हक में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों से ज़्यादा राह रास्त पर हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने लानत की है, और जिसे अल्लाह लानत कर दे तो इसका कोई मददगार ना पाएगा। क्या इनका कोई हिस्सा सल्तनत में है? अगर ऐसा हो तो फिर ये किसी को एक खजूर की गुठली के शिगाफ के बराबर भी कुछ ना दें। या ये लोगों से हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ने अपने फजल से इन्हें दिए? बस हमने तो आले इब्राहिम को किताब और हिकमत भी दी और बड़ी सल्तनत भी अता फरमाई, फिर इनमें से बाज़ ने इस किताब को माना और बाज़ इससे रुक गए, और जहन्नुम का जलाना काफ़ी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया, इन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम, जब इनकी खालें पक जाएंगी, हम इनके सिवा और खालें बदलेंगे ताकि वो अजाब चखते रहें। यकीनन अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और शाइस्ता अमल किए, हम अन करीब इन्हें इन जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। इनके लिए वहाँ साफ़ सुथरी बीवियाँ होंगी, और हम इन्हें घनी छाँव और पूरी राहत में ले जाएंगे। अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें इन्हें पहुँचा दो, और जब लोगों का फैसला करो तो अदल और इंसाफ से फैसला करो। यकीनन वो चीज़ बेहतर है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह करता है, बेशक अल्लाह सुनता है देखता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, फरमाबरदारी करो अल्लाह की और फरमाबरदारी करो रसूल की और तुम में से इख्तियार वालों की। फिर अगर किसी चीज़ में इख्तलाफ करो तो इसे लौटाओ अल्लाह ताला की तरफ और रसूल की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है, ये बहुत बेहतर है और एतबारे इंजाम बहुत अच्छा है। ये भी बहुत अहम हिस्सा था कुरान का, सूरत निसा में। यहाँ आपको अतीउल्लाह और अती रसूल की बात मिलेगी, उलुल अम्र की बात आपने अभी पढ़ी है। जो भी किसी जगह की मैनेजमेंट के लोग हों, जो बड़े हों, इसमें हुक्मरान भी आते हैं, इसमें उलमाए कराम भी आते हैं। दूसरी बात आप देखिए कि सहाबे कराम की जो खूबियाँ थी, उसमें एक क्या थी कि अमानतों का बड़ा ख्याल करते थे। चीज़ हो या ओहदा हो, उसका हक अदा करते थे, फिर इंसाफ पे कायम रहते थे। आयत 58 से ये पता चलता है, आयत 59 से पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की इताअत के बाद सहाबे कराम अपने अमीर की इताअत करते थे। अल्लाह के नबी सफ़र में भी किसी एक को बड़ा बना देते थे, फरमाए तुम में से 3 लोग सफ़र करें तो एक को बड़ा बना लें। तो इस्लाम जो है ना, ये दिन में 5 वक्त की फ़र्ज नमाजों में भी हमें यही सिखाता है कि तुमने अमीर की इताअत कैसी करनी है। और उतनी ही आज हमारे अंदर लीडरशिप की कमी है। एक ऐसा दीन जिसमें दिन में 5 दफ़ा लोगों को जमा किया जाए और एक कॉल पे जमा किया जाए, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह। एक दफ़ा एक नॉन मुस्लिम के साथ कोई मुकालमा था किसी मुसलमान का, तो उसने उसको बोला कि किसी जगह पे अगर 1 लाख लोग हों और सब अपने अपने कामों में, और उनको गैदर करना हो तो कितना टाइम लगेगा। तो उसने कहा कि इसमें तो 7-8 घंटे लग जाएंगे। उसने कहा कि कि वो सारे एक दूसरे की ज़ुबान भी नहीं समझते। कहने का फिर इट्स नॉट पॉसिबल। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने वीडियो चलाई हरम की, लोग अपने कामों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इतने में अजान होती है, दुकानों के शटर बंद होते हैं, और जो ही इकामत है तो वो बिखरी हुई सारी तवाफ़ की और अंदर लोगों की जो सफ़े थी वो रोज़ में बदल गई। एक इकामत के दौरान कई लाख लोग सीधी लाइनों में खड़े हो गए, कान ना बुनियान मरसूस, मुसलमान हो गया शख्स ये अमल देखकर कि जिस दीन की एक कॉल पे इतनी भीड़ एक बड़े ऑर्गेनाइज ग्रुप में बदल गई, उसमें कितना हुसन होगा। आज हमारे अंदर लीडरशिप की तरह हर बंदा लीडर है, हर बंदे को बड़ा बनना है, फॉलोअर बनना बड़ा मुश्किल लगता है। हम रौनत के साथ ना भी सही, गैर महसूस तरीके से बड़ा बनना चाहते हैं। अल्लाह ने इस आयत में 59 में बता दिया कि सहाबाए कराम की इताअत बेमिसाल थी, अपने हर मामले और तनाज़े को कुरान सुन्नत से हल करते थे। फिर आपके मेरे लिए अमल के नुक्ते क्या हैं इन आयात में? नंबर एक, अल्लाह की आयत को मानना, नेक अमल करने, अमानते हकदारों के सुपुर्द करनी है, झगड़ों में फैसले के लिए कुरान और सुन्नत से रुजू करना, अल्लाह रसूल और जिम्मेदारान की इताअत करनी है, और जहाँ भी मौका बने लोगों में अदल से फैसले करने हैं इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि इस्लाम कितना डिसिप्लिन और महज़ब रिलीजन है। अल्लाह करे कि हम इस खूबसूरत दीन को दूसरों को दिखा सके। उसके बाद है जी रुकू नंबर 6, आयत 60-70, अल्लाह और रसूल की इताअत पर साबित कदमी, इसको इख्तियार करने की ज़रूरत है। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़ुमून अन्नहुम आमनू, क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिनका दावा तो ये है कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया इस पर इनका ईमान है, लेकिन वो अपने फैसले गैर अल्लाह की तरफ ले जाना चाहते हैं, हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया है कि शैतान का इनकार करें। शैतान तो ये चाहता है कि इन्हें बहकाकर दूर डाल दे। इनसे जब कभी कहा जाए कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा कलाम की और रसूल की तरफ आओ, तो आप देख लेंगे कि ये मुनाफिक आपसे मुंह फेर कर रुके जाते हैं। फिर क्या बात है कि जब इन पर इनके करतूत के बायस कोई मुसीबत आ पड़ती है तो फिर ये आपके पास आकर अल्लाह की कस्में खाते हैं कि हमारा इरादा तो सिर्फ भलाई और मेल मिलाप का ही था। ये वो लोग हैं कि इनके दिलों का भेद अल्लाह ताला पर बखूबी रोशन है। आप इनसे चश्म पोशी कर लें, यानी इग्नोर करें, ओवरलुक करें, इन्हें नसीहत करते रहिए और इन्हें वो बात कहिए जो इनके दिलों में घर करने वाली हो। हमने हर रसूल को सिर्फ इसीलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से इसकी फरमा बरदारी की जाए, और अगर ये लोग जबकि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया तेरे पास आ जाते और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते और रसूल भी इनके लिए इस्तग़फ़ार करते, तो यकीनन ये लोग अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला और मेहरबान पाते। बस कसम है तेरे परवरदिगार की। बड़ा यूनिक स्टाइल है इस आयत का, नोट कर सकते हैं आप। नबी के रब होने की कसम खाई अल्लाह ने। क्या कहा कसम के बाद? फवरबी का ला यूमिनून, क्या ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस के मामलात में या इख्तलाफात में आपको हाकिम न मान लें। फिर जो फैसले आप इनमें कर दें, इनसे अपने दिल में किसी तरह की तंगी और ना खुशी ना पाएं और फरमा बरदारी के साथ कबूल कर लें। और अगर हम इन पर ये फ़र्ज़ कर देते हैं कि अपनी जानों को कत्ल कर डालो या अपने घरों से निकल जाओ, तो ऐसे में इनमें से बहुत ही कम लोग हुक्म बजा लाते, और अगर ये वही करें जिसकी इन्हें नसीहत की जाती है, तो यकीनन यही इनके लिए बेहतर और ज़्यादा मजबूती वाला हो, और तब तो इन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब दें और इन्हें यकीनन राह रास्त दिखा दें। और जो भी अल्लाह ताला की और रसूल की फरमा बरदारी करे वो इन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, जैसे नबी और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग, ये बेहतरीन रफ़ीक हैं। इस आयत को नोट कीजिए। आप हर रोज़ दुआ करते हैं ना, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उसका जवाब है। इनाम किन पर हुआ? सूरत निसा आयत 69 से देख लीजिए। ये फ़जल अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह काफ़ी है जानने वाला। क्या पता चला आयत 65 से कि सहाबा किराम अपने हर फैसले का हाकिम रसूलुल्लाह को बनाते और इस फैसले को खुले दिल से मानते थे, और सहाबा किराम की तस्लीम व रज़ा बेमिसल और काबिल तकलीद थी। इनका ईमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानने में था। आपको याद होगा कि मैंने ज़ादुल ख़ैर में आपको कुछ वाक़यात सुनाए थे, मसलन हज़रत उमर फ़ारूक हक मेहर को बाउंड करना चाह रहे थे, लेकिन जब उनके सामने कुरान की आयत आ गई तो अपना फ़ैसला वापस ले लिया। इसी तरह के बीसियों वाक़यात आपको सहाबा की ज़िंदगी में मिलते हैं कि जहाँ अल्लाह का कोई हुक्म यानी कुरान की आयत या रसूल की कोई बात आ जाती तो अपनी राय को, अपनी बात को, अपने फतवे को पीछे ले लेते। अल्लाह करे कि आज उम्मत मुस्लिमा भी इसी पे गौर व फिक्र करने लगे। असल में सहाबा की खूबी भी यही थी। फिर आप देखिए कि आयत 69 में अल्लाह ने सहाबा को खुशखबरी दी कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है आखिरत में भी उसी के साथ होगा। अल मरउ मा मन अहब, अल्लाह करे कि हमें भी अच्छे लोगों से मोहब्बत हो और अल्लाह के नबी के तरीक़ों पर हम चल सकें। फिर सहाबा को इनकी इताअत का भरपूर अजर मिलेगा। अल्लाह ने उनकी थोड़ी सी ज़िंदगियों में इतनी बरकत दी कि उन्होंने उससे जन्नतें ख़रीद लीं। और रिवायत एक आती है सही मुस्लिम की 6295 है, हज़रत आयशा से रिवायत है, कहती हैं कि मैंने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी बीमारी में जिसमें आपने वफात पाई इस वक्त आपकी आवाज़ भारी थी। आपने फरमाया कि इन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने एहसान किया, नबी और सिद्दीक और शहीद और नेक बख्त लोगों में से और अच्छे रफ़ीक हैं। यानी आप अपने डेथ बेड पे इस आयत को याद कर रहे हैं कि नेक लोगों का साथ, अल्लाहुम्मा बिर रफ़ीक लाला, अल्लाह रफ़ीक आला से मिलना है। यानी आपकी अपनी भी ये ख्वाहिश थी कि अब मैं अल्लाह ताला से मुलाकात करूँ। अल्लाह हमें भी मौत के वक्त ऐसे हाल में रखे कि वो हमसे राज़ी हो और हमें मौत के खौफ से ज़्यादा अल्लाह से मुलाकात का इंतज़ार हो। आपके मेरे लिए इस रुकू में से अल्लाह की रज़ा पाने के अमल कौन से हैं? नंबर एक, मुनाफिकीन से एराज़ कीजिए। जिस बंदे के बारे में आपको फ़ील होना कि ये खोटा है, कहता कुछ है करता कुछ और है, लोगों के सामने कुछ दूसरों के, तो उसे एराज़ कीजिए, वरना ऐसे ऐसे आपके अंदर भी वो बातें आने लगेंगी। लोगों को हिकमत से समझाना है, बेहतरीन नसीहत करनी है, अल्लाह रसूल के फ़ैसलों पर दिल में तंगी महसूस नहीं करनी, बाहमी इख्तलाफात में कुरान सुन्नत से फ़ैसले करने हैं, और नफ्स पे अगर गुनाह करके जुल्म किया है तो इस पे तौबा और इस्तग़फ़ार करनी है। यानी हर गुनाह बंदे के अपने ऊपर एक वबाल बनेगा। इसके बाद कुछ जिहाद फी सबीलिल्लाह की बातें, रुकू नंबर 7 है, 71 से 76। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू ख़िज़्रकुम, ए मुसलमानों अपने बचाव का सामान ले लो, फिर गिरो गिरो बनकर कूच करो या सब के सब इकट्ठे होकर निकल खड़े हो, और यकीनन तुम में बाज़ वो भी हैं जो पसो पेश करते हैं, फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फ़जल किया कि मैं इनके साथ मौजूद ना था। देखिए, नेकी से पीछे रहने पर खुशी महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ना करे आपका मेरा किरदार ऐसा हो, बल्कि नेकियाँ करके खुश होने वालों में अल्लाह में शामिल करें। और अगर तुम्हें अल्लाह ताला का कोई फ़जल मिल जाए तो इस तरह के तुम में और इनमें दोस्ती थी ही नहीं, कहते हैं काश मैं भी इनके हमराह होता तो बड़ी कामयाबी को पहुंचता। यानी मुनाफिक फ़ायदों का हरीस होता है, जहां फ़ायदा मिलता है वहां जाना चाहता है, जहां नुकसान होता है वहां से हटना चाहता है। बस जो लोग दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले बेच चुके हैं इन्हें अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहिए, और जो लोग अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए शहादत पा लें या गालिब आ जाए, यकीनन हम इसे बहुत बड़ा सवाब अता करेंगे। अल्लाह हमें अपने रास्ते की जद्दोजहद में ले जाए और हमारी मौत को शहादत की मौत बना दे। भला क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में इन कमज़ोर मर्दों और तो और नन्हे नन्हे बच्चों के छुटकारे के लिए जिहाद ना करोगे, जो यूं दुआ मांग रहे हैं कि हमारे परवरदिगार इन ज़ालिमों की बस्ती से हमें निजात दे और हमारे लिए ख़ास अपने पास से हिमायती मुकर्रर कर दे और हमारे लिए ख़ास अपने पास से मददगार बना। और जो लोग ईमान लाए हैं वो तो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, और जिन लोगों ने कुफर किया वो तागूत की राह में लड़ते हैं। बस तुम शैतान के दोस्तों से जंग करो, यकीन मानो कि शैतानी हीला बिल्कुल कमज़ोर और बोदा है, यदि बिल्कुल शैतान के प्लॉट्स बाकी नहीं रहते। क्या पता चला, मोमिन कैयस होता है। मोमिन के पास ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत खूबसूरत प्लान होता है। आप और मैं आज भी इस वक्त भी अपना लाइफ का पर्पस सोचें, व्हाट इज़ माय पर्पस ऑफ लाइफ, बस मेरा जीने का मकसद सिर्फ इसलिए कि मैं रोटियां पूरी कर लूं, खाने पूरे कर लूं। देखिए, बच्चों की तरबियत और उनको पालना भी मकसद हयात है। अगर हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, अपने घर में अच्छा माहौल रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत बड़ा मकसद है। लेकिन जो गफलत में सिर्फ बच्चों के रोज़ी रोटी की फ़िक्र है, उनको बिगाड़ रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, तो ये उनको बिगाड़ने के काबिल है। या आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अमल की बातें इस रुकू में क्या थी? आखरत के लिए दुनिया को फ़रोख्त करना अच्छा कि बुरा? नफ़े का है कि नुकसान का सौदा? आप सोना बेचें और पीतल खरीद लें, क्योंकि बहुत सारा आ जाएगा, कैसा रहेगा? अपने घर के क्रिस्टल के ग्लास बेचें और शीशे के ज़्यादा ग्लास ले लें, दुनिया में तो हम ऐसा नहीं करते। 4 दिन की दुनिया, फिर अंधेरी रातें, क्या बनेगा उस दिन? फिर मुकाबले के लिए तैयार रहना है। यदि मोमिन निडर होता है, डरता नहीं है किसी से, और जिहाद फी सबीलिल्लाह के हर एंगल को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी है। आखरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है, इसलिए हमने आखरत को पाने के लिए, उसमें खैर के लिए ज़िंदगी में अच्छे काम करने हैं, शैतान के साथियों से लड़ना है और अल्लाह की राह में शहीद होने की ख्वाहिश करनी है। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बंदे का किबला बदलने लग जाता है। आगे है रुकू नंबर 8, आयत 77 से 87। दर गुजर करने का हुक्म। अलम तर इलल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़ू अयदीकुम। और इसको नोट कीजिएगा, ये आयत बड़ी अहम है। मक्की दौर में हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी गई, हालांकि परसिक्यूशन भी थी, जुल्म भी था, बर्बरियत भी थी, सब कुछ था। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जिन्हें हुक्म किया गया था कि अपने हाथों को रोके रखो और नमाज़ें पढ़ते रहो और ज़कात अदा करते रहो? फिर जब इन्हें जिहाद का हुक्म दिया गया, तो इसी वक्त इनकी एक जमात लोगों से इस कदर डरने लगी जैसे अल्लाह का डर हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा। क्या आज हम भी लोगों से डरते हैं? सवाल लिखिए अपने लिए, मुझे अल्लाह का डर ज़्यादा है या लोगों का? मुझे अल्लाह से ज़्यादा उम्मीदें हैं या लोगों से? और वो कहने लगे, ए हमारे रब, तूने हम पर जिहाद क्यों फ़र्ज़ कर दिया? क्यों हमें थोड़ी सी ज़िंदगी और ना जीने दिया? आप कह दीजिए कि दुनिया का फ़ायदा तो बहुत ही कम है और परहेजगारों के लिए तो आखिरत ही बेहतर है, और तुम पर एक धागे के बराबर भी सितम रवाना किया जाएगा। तुम जहाँ कहीं भी हो, ऐ नमा तकुनु युद्रिककुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी हो, मौत तुम्हें आकर पकड़ेगी, वो तो मजबूत कलों में हो। और अगर इन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर कोई बुराई पहुंचती है तो कह उठते हैं कि ये तेरी तरफ से है। इन्हें कह दो कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, इन्हें क्या हो गया कि कोई बात समझने के करीब भी नहीं? तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। हमने तुझे तमाम लोगों के तक पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा, और अल्लाह ताला गवाह काफ़ी है। इस रसूल की जो इताअत करे, इसी ने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की, और जो मुंह फेरे, तो हमने आपको इन पर कुछ निगहबान बनाकर नहीं भेजा। यानी ये अपने आमाल के खुद जिम्मेदार हैं। ये कहते तो हैं कि इताअत है, फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं, तो इनमें से एक जमात जो बात आपने या इसने कही है, इससे इसके खिलाफ रातों को मशवरा करती है। इसकी रातों की बातचीत अल्लाह लिख रहा है, तो आप इनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला काफ़ी कारसाज़ है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? इसको हाईलाइट कीजिए, अफला यतदब्बरून अल कुरान। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता, तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तलाफ पाते। क्या कुरान में इन 5 पारों में आपने कोई इख्तलाफी बात पढ़ी? एक ही बात, हालांकि 23 साल में नाजिल हुआ, इसमें तो बंदे का इंटेलेक्ट चेंज हो जाता है। लेकिन चूंकि ये अल्लाह का कलाम है, सीक्वेंस हारमनी है इसमें। फरमाया, जहाँ इन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली, उन्होंने इसे मशहूर करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये लोग इसे रसूल के और अपने हक में ऐसी बातों की तह तक पहुँचने वालों के हवाले कर देते, तो इसकी हकीकत वो लोग मालूम कर लेते जो नतीजा अखज़ करते हैं। और अगर अल्लाह ताला का फजल और इसकी रहमत तुम पर ना होती, तो सिवाय चंद लोगों के तुम तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते। कितनी बड़ी बात है, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने बचाया हुआ है। तो कही अल्लाह ताला हमें शैतान से मरते दम तक बचा के रखना। तो अल्लाह की राह में जिहाद करता रहे, तुझे सिर्फ तेरी ज़ात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को रग़बत दिलाता रहे। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला काफिरों की जंग को रोक दे, और अल्लाह ताला सख्त कुव्वत वाला है और सज़ा देने में भी सख्त है। जो शख्स किसी नेकी या भले काम की सिफारिश करे, इससे भी इसका कुछ हिस्सा मिलेगा, और जो बुराई और बदी और बुराई की सिफारिश करे, इसके लिए भी इसमें एक हिस्सा है। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। यह किसके बारे में है? आप सबके बारे में है। आप देखिए कि आप सब यहाँ जो पहुँचे हैं, किसी के कहने या बताने पे पहुँचे हैं ना। आपको कैसे पता चला कि इस घर में दौरे कुरान हो रहा है? या कोई फ्लायर देखा होगा, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आई होगी, या आप में से किसी को किसी ने बुलाया होगा। बस ये आयत है, बताने वाला शायद खुद ना आया हो। आपका यहाँ बैठना, सुनना, थकना, नींद आना, कमर दुखना, उनको इस सब में बगैर कुछ किए अजर पूरा मिल रहा है। कितना आसान है दूसरे को नेकी की दावत देकर उसकी नेकियों में हिस्सेदार बनना। इसके बरक्स बुरे काम की बात करके अपने लिए गुनाहे जारिया रखना, तो अपने लिए सदका जारिया कमाएं। गुनाहे जारिया नहीं, सदका जारिया। सिर्फ एक, आप जितने लोग यहाँ आज बैठे हुए ना, चले कुछ चेयर्स तो खाली हैं ना, सिर्फ एक को कल साथ ले आए। कोई एक आ जाए, आपके हमें होमवर्क मिला, हमने एक होना। आप अपनी लिस्टों को बता दें, आप उनको बता दें, हम जो सुन रहे हैं अपना फीडबैक दे दें। देखिए, जब आप बार बार लोगों से कहते हैं ना आना आना, लोग नहीं आएंगे, कहेंगे ये क्यों हमें फोर्स कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं, मासे कर रहे हैं। अपना शेयर कर दें। आप किसी को कहते हैं खाना खा लो, वो कहते हैं भूख नहीं। मियाँ साहब हैं, आपने कहते हैं खाना खा लें, वो कहते हैं भूख नहीं भूख नहीं। आप एक से दो बार कहेंगे वो चिढ़ेंगे, भाई मुझे भूख नहीं है। आप क्या करें? उन्हें कहना, अच्छा मेरे साथ बैठ जाए, मैं खाने लगी हूँ। आप जो ही आपने दम खोला, पुलाव की खुशबू आई, आपने उनको नहीं अब कहना। और जो ही आपने कोरमे का ढक्कन खोला और आपने दाल खोली, भिंडियाँ खोली, अब क्या होगा? आपको पता भी नहीं चलेगा, वो चुपके से आपके साथ खाना शुरू हो जाएंगे। आपका अपना टेस्ट दूसरों को जाता है, और गैर महसूस तरीके से। हमारे पास इतनी रिवायतें हैं इस चीज़ की, ख़ास तौर पर कोरोना के दिनों में। अब जब घरों से दौरे कुरान हुआ, हमने कहाँ से किया, कैसे रहा, अल्लाह का शुक्र है हुआ सब कुछ। एक दिन फारिग नहीं बैठे हम लोग, बल्कि जितना काम कोरोना के 2 सालों में हमारे अपने नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म में हुआ है, उसे पिछले 10 साल में नहीं हुआ था। और उसके बाद तो जंगल की आग की तरह ही कुरान फैल गया, घरों में गया, मर्दों ने सुन लिया, औरतें सुन रही थी, मर्दों ने सुना, बच्चों ने सुना, अगर यानी इतनी उसकी खैर घरों में आई कि अल्लाह अकबर। तो आप खुद जो चीज़ सुनते हैं अपने बच्चों को सुनाइए, आपका एक पेस हो जाएगा। कितना अच्छा लगता है, दो लोग घर में, बहू सास बहू एक ही चीज़ सुन रही हैं, दोनों खाने की टेबल पे बातें। हमारे यहाँ कई ऐसी रिवायतें हैं कि एक ही क्लास में सास भी है तो बहू भी है, खड़े होकर गवाही दे देती हैं इस बात की कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए। सगी बहनें भी हैं जिनमें हर वक्त रुकावट लगी रहती है। तो ये जो है ना नेकी की सिफारिश, ये बहुत कीमती है। इससे कुछ किए बगैर आपका हिस्सा होता है। कोई एक तो ऐसा होगा ना जिसका आप सदका जा रही हैं, किसी एक ने आपको कभी कुरान की तरफ बुलाया होगा। अब वो कब्रों में होंगे या हैं, पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन आपकी हर नेकी उनके साथ है। तो अल्लाह ताला हमें हिर्स दे दे कि हम नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालने वाले बने। आगे क्या है? और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम इससे अच्छा जवाब दो, ये नहीं कि हाँ ठीक है सलाम ओके, ना स्माइल, ना एक्सप्रेशंस, ना फीलिंग्स। तो सलाम का जवाब कैसे देना चाहिए? करूँ आपको सलाम? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कोई इतनी मोहब्बत नहीं है अभी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, थोड़ी थोड़ी जागी है अभी। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे फीलिंग एक्सप्रेशन से भी पता चलता है ना। तो यहाँ सलाम करना सिखाया जा रहा है आपको। मुझे फरमाया कि जब तुम्हें सलाम किया जाए तो इससे अच्छा जवाब दो, और या इन्हीं अल्फाज को लौटा दो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो तुम सबको यकीनन क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। अल्लाह ताला से ज़्यादा सच्ची बात वाला और कौन होगा? जवाब दे, कोई भी नहीं होगा। तो क्या पता चला आयत 77 से कि सहाबा किराम बहुत दूरंदेश थे, हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे राज़ी रहते और अमल करने के लिए तैयार रहते। वो दुनिया के थोड़े से फ़ायदों पर नहीं रीझते थे, उनकी नज़र हमेशा आखरत के और बड़े फ़ायदे पे होती थी। हम दुनिया के मामले में तो बहुत कुछ चाहते हैं, हल मिम मज़ीद, डू यू हैव सम मोर, अल्हाकु मुत्तकासुर, और आखरत पे हम क्या कॉन्टेंट, मुतमईन, चलो ना कुछ तो कर रहे हैं, चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। नहीं, लिखिए इस पूरे रुकू में से अमल की बातों में पहली बात, अपनी नेकियों पे मुतमईन नहीं होना, अपनी कोशिशों पे सेटिस्फाइड नहीं होना। नमाजें भी कायम करनी है, ज़कात भी देनी है, कुरान पे गौर व फिक्र भी करना है, और सलाम को आम करना है, हाय बाय को छोड़ देना है, और अस्सलाम वालेकुम कल्चर बनाना है, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद और अहले ईमान के जिहाद करने पे उनकी हौसला अफजाई करनी है, दीन की जिद्दोजहद करने वालों को एडमायर भी करना है और असिस्ट भी करना है, और कभी कोई खबर सुने तो अफवाह साजी की बजाय जिम्मेदारान तक पहुँचा देना है, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी ज़िंदगी की इस मोहलत को काफ़ी नहीं समझें। लोग बहुत कुछ करके दुनिया से गए, अल्लाह हमसे भी कुछ करवा ले। फिर आगे रुकू नंबर 988 से 91, टॉपिक है इस्लाम के मौक़ पर इस्तकामत इख्तियार करो। फ़मा लकुम फ़िल मुनाफ़िकीन फ़ियतैन, और यहाँ एक दूसरा भी आपको अंदाज़ बता दूँ इन आयतों का, मुनाफ़िकीन की बातें हैं यहाँ। बड़ा स्ट्रॉन्ग हिस्सा है ये सूरत निसा का, कॉल और फेल के तज़ाद के साथ जब बंदा नेकियाँ करता है तो अमूमन वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देती हैं। कैसे? फ़मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया कि मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह हो रहे हो, यानी तुम्हारी दो राय हो रही हैं। इन्हें तो इनके अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने ओंधा कर दिया, अब क्या तुम ये मंसूबे बना रहे हो कि अल्लाह ताला के गुमराह किए हुओं को तुम राह रास्त पर ला खड़ा करो, जिसे अल्लाह राह भुला दे तो हरगिज़ इसके लिए कोई राह ना पाएंगे आप। इनकी तो चाहत है कि जिस तरह के काफिर वो हैं तुम भी इनकी तरह कुफर करने लगो और फिर सब यकसां हो जाओ। बस जब तक ये इस्लाम की खातिर वतन ना छोड़ें और इनमें से किसी को हकीकी दोस्त ना बनाओ, फिर अगर ये मुंह फेर लें तो इनको पकड़ो और कत्ल करो जहां भी ये हाथ लग जाएं। खबरदार इनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार ना समझ बैठना, सिवाय इनके जो इस कौम से ताल्लुक़ रखते हों, जिनसे तुम्हारा माहदा हो चुका है, या वो जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि तुमसे जंग करने से भी तंग दिल है। ये आप कह लें कि मुसलमानों की फॉरेन पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, खारजा पॉलिसी, कि कैसे लोगों से ताल्लुकात रखने हैं, हर बंदे से उसके मामले के मुताबिक। फरमाया, और अपनी कौम से भी जंग करने में तंग दिल हैं, यानी जिनसे तुम्हारा माहदा हो चुका है या जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि तुमसे जंग करने से भी तंग दिल हैं और अपनी कौम से भी जंग करने में तंग दिल हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता और वो तुमसे यकीनन जंग करते, बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर लें और तुमसे लड़ाई ना करें और तुम्हारी जानिब सुलह का पैगाम डालें, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन पर कोई राह लड़ाई की नहीं रखी। तुम कुछ और लोगों को ऐसा भी पाओगे जिनकी बज़ाहर चाहत है कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब कभी फितना अंगेजी की तरफ लौटाए जाते हैं तो ऊंधे मुंह इसमें डाल दिए जाते हैं। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी ना करें और तुमसे सुलह का सिलसिला जानिबदानी ना करें, यानी तुमसे सुलह का सिलसिला बाकी ना रखें और अपने हाथ ना रोक लें, तो इन्हें पकड़ो और मारो जहाँ कहीं भी पाओ। यही वो हैं जिन पर हमने तुम्हें ज़ाहिर हुज्जत अनायत फरमाई। याद रखिए, ये सारी आयतें एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में हैं, सिर्फ तर्जमे से इस पे कोई कमेंट ना करिएगा। ऐसी आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करके लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, तो ये पीछे जंगे हैं, इसमें सरकमस्टांसिस हैं। हम चूंकि इस वक्त सिर्फ थॉरली इसको समझना चाह रहे हैं, अमल की बातें इसमें से ये ले लीजिए कि अल्लाह की रहनुमाई में चलना है, निफाक से बचना है, कॉल ऑफ फेल के तजाद से बचना है, منافقین کے اعمال کی جو سزا ملے گی اس کا یقین رکھتے ہوئے خود کو ان ساری چیزوں سے روکنا ہے، اور اگر منافقین آپ کے ساتھ دوغلی پالیسی اختیار کریں تو ان سے کیئرفل رہنا ہے، اگر صلح کرنا چاہیں تو ظلم نہیں کرنا، فتنوں سے بچنا ہے اور آپس میں صلح صفائی سے رہنا ہے جس حد تک رہ سکے، اور دل میں منافقت سے کراہت محسوس کرنی ہے۔ نفاق بہت کھوٹی چیز ہے، ایسا شخص بظاہر تو بڑا اچھا بنتا ہے لیکن وہ پہلے سے بھی دوسروں سے بھی زیادہ برا بن جاتا ہے۔